अध्याय 8 संविधान अर्थ एवं प्रकार। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक ने इस ओर ध्यान दिया कि राज्य का क्या रूप होना चाहिए। उन्होंने राजतंत्र के मूल तत्वों पर विचार किया और उन तत्वों के अनुसार राज्य का संगठन कैसा होना चाहिए, किन व्यक्तियों के हाथ में राज्य शक्ति रहनी चाहिए और उनके उस शक्ति का किस उद्देश्य से प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बातों की विस्तृत विवेचना की। प्लेटो और अरस्तु ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने राज्य के वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांतों को बतलाया और संविधान का वर्गीकरण किया। 15वीं शताब्दी के आसपास इस संबंध में राजनीतिक दार्शनिकों ने काफी विचार किया और अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति ने जर पकड़ी और प्रजातंत्र का निश्चित रूप से विकास शुरू हुआ। फ्रांस में लिखित संविधान को जन्म दिया गया। अमेरिका में सर्वप्रथम अलिखित रूप से विकास शुरू हुआ। फ्रांस में लिखित संविधान को जन्म भी मिला और उन्नति भी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी, बेल्जियम, इटली आदि देशों में संविधान का निर्माण किया गया। एशिया के देशों में जैसे जापान, टर्की, ईरान, चीन, मिस्र इत्यादि में लिखित संविधान का जन्म हुआ। विगत कुछ वर्षों के इतिहास में लिखित संविधान द्वारा अनेक देशों के शासन को निश्चित रूप दिया गया, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों ने संविधान आज प्राय हर देश को निजी तथा निश्चित संविधान प्राप्त है। पहला, संविधान का अर्थ और परिभाषा। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। साधारणतः इसका प्रयोग बनावट के अर्थ में किया जाता है, विशेषकर शरीर के बनावट या ढांचे के अर्थ में। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संविधान शब्द का अभिप्राय बनावट से ही है, लेकिन यह बनावट राजरूपी शरीर से संबंधित है। अर्थात संविधान का अभिप्राय राज्य के ढांचे, बनावट तथा संगठन से है। प्रत्येक राज्य के चार प्रमुख तत्व हैं: शासन, भूमि, जनता तथा सार्वभौमिकता। संविधान का संबंध शासन से है। शासन की व्यवस्था किस प्रकार हो, इसका ढांचा कैसा हो, इसके कौन कौन से अंग हों और उन अंगों में क्या पारस्परिक संबंध हो आदि से संबंधित नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान में लिखित प्रलेखों या नियमों, लोकाचारों, परंपराओं और व्यवहारों पर आधारित हो सकता है। थोड़े में संविधान उन लिखित नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा शासन के स्वरूप, संगठन, कार्यक्षेत्र, शासन के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध की व्याख्या की जाती है तथा इनका संचालन होता है। सर्वप्रथम सम्राट हेनरी द्वितीय ने राजा तथा पादरियों के पारस्परिक संबंध को स्थापित करने वाले राज्य के नियमों को संविधान कहा था, लेकिन उस समय संविधान का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया गया था। आज संविधान का विस्तृत अर्थ यह है कि राज्य के कार्यों का संचालन करने वाले मूल नियमों तथा सिद्धांतों को समसिष्ट को संविधान कहते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः यह निश्चित किया जाता है कि राज्य की सरकार किस प्रकार की हो, इसके कौन कौन से विविध अंग हैं, उन अंगों की शक्ति क्या हो, उनमें क्या पारस्परिक संबंध हो, शासित के क्या अधिकार तथा कर्तव्य हों और शासक तथा शासित के बीच क्या संबंध हो। इस संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। पहला, राज्य के शासन का स्वरूप तथा संगठन, दूसरा सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन तथा कर्तव्य, तीसरा सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध, चौथा नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य, पांचवा शासन तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंध। ब्राइस के अनुसार संविधान निश्चित नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार की कार्यविधि और जिनके द्वारा उसका संचालन होता है। दूसरा उलझे संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियां शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच का संबंध स्थापित करती है। डाइसी के अनुसार संविधान उन वस्तुओं के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्यादा की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। हुवियस के अनुसार संविधान उन नियमों का संग्रह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करता है जिनके लिए शासन शक्ति परिवर्तित की जाती है और जो शासन के उन विविध अंगों की पुष्टि करता है जिसके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। लॉस्की के अनुसार नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि ऐसे नियम कैसे बनाए जाएं, किस प्रकार वे बदले जाएं और उन्हें कौन बनाए। हरमन फाइनर के अनुसार राज्य प्राणियों का ऐसा समुदाय है जिसमें मनुष्य और उनकी संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन का कार्य होता है। राजनीतिक संस्थाएं शक्ति संतुलन का परिवर्तन करती हैं और मौलिक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था ही संविधान है। गेटल के अनुसार वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाते हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित विधियों नियमों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिन पर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग के अनुसार संविधान एक विचारपूर्ण लिखित उत्पादन हो सकता है, वह ऐसे आलेख के रूप में हो सकता है जो विकास के अनुसार स्वयं परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, अथवा यह ऐसे पृथक कानूनों का समूह हो सकता है जिन्हें संविधान के कानून के रूप में स्वीकृत दी गई हो, तथा पुनः ऐसा भी हो सकता है कि संविधान का आधार एक दो मौलिक कानूनों के रूप में निश्चित हो तथा शेष अपनी स्वीकृति के लिए प्रयासों की शक्ति पर निर्भर हो। दूसरा संविधान का महत्व। संविधान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि समाज का ढांचा बतलाया जाता है। यह संविधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जिसमें कि ना केवल संस्थाओं के मूल तत्व ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकार का ढांचा भी शामिल है। इसमें स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य अपने लिए ऐसे संविधान की रचना करता है जो उसके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हों। इस तरह की परिस्थितियां सभी जगह एक सी मौजूद नहीं होती, इसलिए सभी देश के संविधान भी एक से नहीं होते। इन विभिन्नताओं के कारण आज संसार के विभिन्न शासन प्रणालियां पाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी देशों के लिए संविधान आवश्यक नहीं, उदाहरण स्वरूप स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली। डॉक्टर टॉकविले तथा अन्य विद्वानों ने यह बतलाया है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, परंतु ऐसे संविधान का प्रयोग संकुचित अर्थ में करते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि सिर्फ लिखित संविधान से होता है, पर लेकिन सच पूछा जाए तो संविधान उनके समस्त नियमों, उपनियमों, लोकाचारों तथा अभिसमयों का संग्रह है, जिसके द्वारा राज्य के नागरिकों के संबंध में शासन के अधिकारों एवं कर्तव्यों और नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्यों एवं अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण हो। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के लिए संविधान आवश्यक है। जेलिनेक के शब्दों में संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संविधान विहीन राज्य की सत्ता असंभव है। संविधान के अभाव में राज्य को अराजक कहा जाता है, अतः संविधान के बिना किसी भी देश का शासन परिचालन कठिन हो जाता है। खासकर प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संविधान अनिवार्य है। संविधान शासन के ऊपर एक अंकुश है, यह नागरिकों की रक्षा करता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें शासितों के हाथ में राज्य शक्ति हो और वे अपनी बुद्धि के अनुसार उस शक्ति का संचालन करने में स्वतंत्र हों। यह स्थिति एक सुस्पष्ट तथा व्यवस्थित संविधान के अंतर्गत ही संभव है। संविधान का वर्गीकरण। राजनीतिक शास्त्र वेताओं ने विभिन्न आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण के मुख्य दो मूल सिद्धांत हैं। प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के मुख्य स्रोत का आधार बताया गया है और दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत संविधान और साधारणतः कानून को भेद को। मुख्यतः संविधान के निम्नलिखित प्रकार बतलाए जा सकते हैं। पहला, विकसित तथा निर्मित संविधान। दूसरा, लिखित और अलिखित संविधान। तीसरा, नमनीय और अनमनीय संविधान। विकसित और निर्मित संविधान। विकसित संविधान उस संविधान को कहते हैं जो ऐतिहासिक हो और जिसका निश्चित रूप स्वरूपों के युगों के राजनीतिक विकास के कारण हुआ हो। अतः ऐसा संविधान किसी संविधान निर्मातृ सभा द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐतिहासिक विकास का वह परिणाम होता है। जैसे जैसे शासन का स्वरूप विकसित होता है, उसी के अनुसार संविधान का विकसित रूप भी निखरता है। ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। ऐसा संविधान कोई निश्चित संविधान नहीं होता, इसमें समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा संविधान मूलतः अलिखित होता है और उसमें परंपराओं, अभिसमयों, लोकाचारों और न्यायालयों के निर्णय होते हैं। ब्रिटेन का संविधान इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है। ब्रिटेन के संविधान को बुद्धि और इमरजेंसी का जान कहा जाता है। विकसित संविधान का एक खास गुण यह होता है कि इसमें संशोधन करने के लिए खास प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। ऐसा संविधान मानव हित और राज्य हित के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह संविधान मनुष्य की भांति सदैव गतिशील रहता है। ऐसा संविधान सामाजिक और राजनीतिक क्रांति और रक्तपात को रोकता है। ऑंग ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान एक सचेष्ट जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर तथा अस्थायी विकास की क्षमता है। विकसित संविधान का यह विशिष्ट गुण है। विकसित संविधान का अवगुण यह होता है कि कभी कभी शासन का ढांचा विवेक से बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि इसे काफी सोच विचार के बाद ही नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐतिहासिक क्रम की धारा का यह शिकार हो जाता है। अतः कभी कभी इसका विकास समुचित दिशा में नहीं हो पाता। निर्मित संविधान। निर्मित संविधान मनुष्य द्वारा निर्मित संविधान है। इसमें देश के नागरिक संविधान निर्माती सभाओं के माध्यम से बनाते हैं। इसका निर्माण काफी विचार विमर्श के बाद होता है। निर्मित संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि यह लिखित होता है
प्राय इसमें संविधान के आदर्श सिद्धांतों का समावेश पाया जाता है। निर्मित संविधान का आदर्श नमूना अमेरिका का संविधान है। उसका निर्माण 1707 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा हुआ, जिसके लिखित रूप को अभी तक 27 संशोधनों ने विस्तृत किया है। भारत का संविधान भी भारतीय संविधान सभा द्वारा 3 वर्षों से अधिक समय के बाद निर्मित किया गया। सोवियत रूस, स्विट्जरलैंड आदि के संविधान भी निर्मित संविधान हैं। यह वर्गीकरण पूर्णतः मान्य नहीं है। आलोचकों का कहना है कि कोई भी संविधान ना तो पूर्ण विकसित हो सकता है और ना तो पूर्ण है निर्मित ही। उदाहरण स्वरूप, इंग्लैंड के संविधान में विकसित तथा निर्मित दोनों तत्वों का समन्वय पाया जाता है। इसके लिखित अंगों के अंतर्गत मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, स्टैट्यू ऑफ वेस्टमिंस्टर आदि का प्रमुख है। विकसित अंगों के दृष्टांत रूप में मंत्रिमंडल की नियुक्ति, लोकसभा के अध्यक्ष दल का स्थान, दल पद्धति का विकास आदि का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार अमेरिका का जैसे देश का संविधान भी दल पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास हुए। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान यद्यपि मुख्यतः विकसित संविधान है, फिर भी उसमें लिखित तत्व वर्तमान हैं। ठीक इसी प्रकार अमेरिकी संविधान यद्यपि मुख्यतः लिखित है, फिर भी उनमें विकसित अंश मौजूद हैं। निष्कर्षतः किसी भी संविधान को पूर्ण विकसित या निर्मित संविधानों के वर्गों में नहीं रखा जा सकता। अलिखित और लिखित संविधान लगभग विकसित और निर्मित वर्गीकरण के समान ही संविधान को अलिखित और लिखित वर्गों में रखा जाता है। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान का अर्थ नहीं लिखा हुआ संविधान। इस प्रकार के संविधान के नियम किसी पुस्तक के रूप में संकलित नहीं पाए जाते, ना तो इनका निर्माण ही किसी खास सभा द्वारा और किसी खास समय में किया जाता है, बल्कि इनका आधार रीति रिवाजें, परंपराएं आदि हैं। इस तरह के संविधान प्राय स्वतः विकसित होते हैं तथा इतिहास के क्रमिक विकास के साथ राजनीतिक संस्थाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। सदियों के परिवर्तन और व्यवहार के बाद कुछ नियम राज्य शासन के स्थायी नियम बन जाते हैं और वे विभिन्न अंगों का रूप ले लेते हैं। गार्नर के शब्दों में अलिखित संविधान में वह है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र या लेखा पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती। थोड़े में अलिखित संविधान का निर्माण प्राचीन काल के बहुत परंपराओं, रीति रिवाजों और वैधानिक प्रथाओं के अनुसार होता है। अलिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ नमूना ब्रिटेन का संविधान है। यह संविधान एक विकसित संविधान है, यह किसी कागज पर लिखा हुआ नहीं मिलता। इसका आधार अलिखित रीति रिवाज, राजनीतिक परंपरा, व्यवहारिक नियम और न्यायिक निर्णय है। ब्रिटिश संविधान के प्राय मुख्य नियम अभिसमयों पर आधारित है। सम्राट की स्थिति, मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री की शक्तियां व उत्तरदायित्व, राजनीतिक दलों के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष की स्थिति आदि प्रमुख संवैधानिक तत्व रूढ़ियों पर ही आधारित हैं। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः अलिखित है गलत होगा। उसमें लिखित तत्व भी मौजूद हैं, जैसे मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स। इस प्रकार अलिखित संविधान में भी यद्यपि अभिसमय और परंपराओं पर आधारित तत्वों की प्रमुखता रहती है, लेकिन लिखित तत्व भी उनमें मौजूद मिलते हैं। अलिखित संविधान के गुण और दोष। गुण, नमनशीलता। अलिखित संविधान नमनशील है। अलिखित होने के कारण वह समय तथा परिस्थिति के मांग के अनुसार आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। यह देश की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का दर्पण कहा जा सकता है, क्योंकि उनके अनुकूल इसमें संशोधन होता है। दूसरा, समयानुकूल अलिखित संविधान समयानुकूल बदलते रहने के कारण क्रांति एवं राजनीतिक उथल पुथल के भय को दूर करता है, क्योंकि वह जनमत की मांग के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए उसके प्रति किसी को बहुत ज़्यादा विरोध नहीं रह जाता। वह सभी मांगों को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार उसे किसी भी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अतः उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा, संकट काल में गुणकारी। संकट काल में अलिखित संविधान बहुत ही गुणकारी सिद्ध होता है। चूंकि यह परंपराओं पर आधारित है, इसलिए सरकार आवश्यकता अनुसार संविधान के नियमों को आसानी से और जल्दी में बदल सकती है। उदाहरण स्वरूप, द्वितीय महायुद्ध के समय इंग्लैंड में युद्ध के निर्मित शासन यंत्र को आसानी से पुनः संगठित किया जा सका, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका को अत्यंत मर्यादित ढंग से काम करना पड़ता था। चौथा, राजनीतिक जीवन में निरंतरता। अलिखित संविधान राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में एक निरंतरता ला देता है, क्योंकि संविधान के नियम सदियों तक प्रयोग में लाने के बाद स्थिर हो जाते हैं, इसलिए यह आशा की जाती है कि भविष्य में भी वे कायम रहेंगे। इस प्रकार अभी समयों पर आधारित संवैधानिक नियम भूत वर्तमान और भविष्य को एक कड़ी में जोड़ देते हैं। अब तक हम अलिखित संविधान के गुणों की व्याख्या कर रहे थे, परंतु अब हम अलिखित संविधान के दोषों की व्याख्या करेंगे। अलिखित संविधान के दोष निम्नलिखित हैं। पहला, निश्चित तथा स्पष्ट नहीं। आलोचकों की यह शिकायत है कि अलिखित संविधान निश्चित तथा स्पष्ट नहीं होता। दूसरा, दृढ़ और स्थायी नहीं। अलिखित संविधान अत्यधिक लचीला होने के कारण दृढ़ और स्थायी नहीं होता। तीसरा, संघात्मक शासन के लिए अनुपयुक्त। अलिखित संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध अलिखित होने के कारण अनिश्चित अस्पष्ट तथा विवादपूर्ण बन सकता है। चौथा, प्रशासन कार्य में गड़बड़ी का डर। अलिखित संविधान के अंतर्गत प्रशासन कार्य में गड़बड़ी होने का डर बना रहता है, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या नहीं रहती। शासन व्यवस्था सदा एक रहस्य का विषय बना रहता है, क्योंकि उसमें निश्चितता का अभाव रहता है। पांचवा, नागरिक स्वतंत्रता के अपहरण का भय। अलिखित संविधान में स्वतंत्रता के अपहरण का भय बना रहता है, क्योंकि उसकी स्पष्ट परिभाषा तथा उसकी रक्षा के साधन की स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। छठवां, अत्यंत लचीला। अलिखित संविधान बहुत ही लचीला होता है। उसे किसी भी समय किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। कभी कभी उसमें क्षणिक आवेश में भी परिवर्तन लाए जाते हैं, यद्यपि ये परिवर्तन विवेकपूर्ण नहीं होते। राजनीतिक दलों को ऐसे संशोधनों में खुलकर देखने का मौका मिलता है। लिखित संविधान। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसके सिद्धांत स्वरूप और नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान पर लिपिबद्ध रहते हैं। उसकी आधार रीति रिवाज और परंपरा नहीं, बल्कि किसी खास समय या समयों में काफ़ी सोच विचार के बाद विवेक के आधार पर बने नियम होते हैं। लिखित संविधान प्राय संविधान निर्माता सभाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें राज्य के स्वरूप, संगठन, नागरिकों के अधिकार, राज्य और नागरिकों के बीच संबंध आदि विषयों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऐसा संविधान एक संवैधानिक कानून के रूप में ही हो सकता है या अनेक कानूनों के सम्मिश्रण से बन सकता है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संवैधानिक कानून है, जबकि 1875 ईस्वी का फ्रांसीसी गणतंत्र का संविधान तीन पृथक तिथियों में बने तीन कानूनों के खंडों से मिलकर बना था। भारत का संविधान भी एक लिखित संविधान का आदर्श नमूना है। लिखित संविधान में अलिखित संविधान की भांति मनचाहे रूप से संशोधन नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसे संविधान में परिवर्तन लाने के लिए एक विशेष संशोधन की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। अतः लिखित संविधान दुर्परिवर्तनशील होता है। ऐसे संविधान की परिभाषा देते हुए गवर्नर ने कहा है कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेखकों या परलेखकों में लिखे होते हैं। एक भारतीय विद्वान का कहना है कि यह नियोजित और सुरक्षित परलेख होता है जिसमें सूत्र रूप में लिपिबद्ध किया जाता है और जिसे कोई संविधान सभा या प्रसभा स्वीकार करती है। गुण: शासन में सुगमता। लिखित संविधान सुगम शासन की जननी है। कारण यह है कि इसमें शासन के संगठन तथा अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या पाई जाती है। दूसरा, दृढ़ और निश्चित शासन। लिखित संविधान एक दृढ़ निश्चित शासन को जन्म देता है। तीसरा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निश्चित व्याख्या की जाती है जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा संभव हो। चौथा, सरकार के कार्य में मर्यादा के भीतर। लिखित संविधान एक बहुत बड़ा नियंत्रण है क्योंकि इसमें सरकार के शक्तियों और कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विवरण मिलता रहता है। अतः सरकार मर्यादित रूप से कार्य करती है। अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की जाती हैं। पांचवा, संघात्मक शासन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए लिखित संविधान सर्वाधिक उपयुक्त है। संघात्मक संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकार के संबंध का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए। यह लिखित संविधान में ही संभव है। छठवां, स्थायित्व। लिखित संविधान स्थायी होता है। काफी सोच विचार के पश्चात विवेक के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। अतः वह समाज के राजनीतिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करता है। सातवां, अधिक मान्य एवं पवित्र। स्पष्टता, दृढ़ता और निश्चितता के गुणों के कारण लिखित संविधान को अधिक मान्यता प्रदान की जाती है और अधिक पवित्र माना जाता है। दोष: पहला, समयानुकूल परिवर्तन कठिन। लिखित संविधान में परिवर्तन लाने के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। अतः उनमें समयानुकूल परिवर्तन लाना बड़ा कठिन कार्य है। अतः लिखित संविधान में समाज की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, असामाजिक होने की संभावना। अपरिवर्तनशील होने के कारण संविधान ऐसा हो जाता है। यह आलोचना बहुत उपयुक्त नहीं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो घोड़ा गाड़ी के युग में निर्मित हुआ था आज युग में भी उसी तरह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तीसरा, नमनशीलता और संयोजनशीलता का अभाव। असामयिक होने के कारण लिखित संविधान में नमनीयता और संयोजनीयता नहीं रह पाती। अतः क्रांति और विद्रोह का भय बना रहता है। गवर्नर का कहना है कि लिखित संविधान वैसा ही है जैसा कि एक व्यक्ति के लिए उसकी भाविक शारीरिक वृद्धि और आकार का विचार किए बिना एक कोट पहनाना। लिखित संविधान सुदूर भविष्य के लिए सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये सिद्धांत भावी राजनीति विकास के अनुकूल नहीं भी होते और उसे कुंठित भी कर देते हैं। चौथा, विचार आगे बढ़ जाते हैं, संविधान स्थिर रह जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि लिखित संविधान जनमत का दर्पण नहीं, चूंकि उसमें परिवर्तन लाना साधारण बात नहीं, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि लॉर्ड मैकैले ने कहा है कि विचार आगे बढ़ जाते हैं लेकिन संविधान स्थिर रह जाता है। पांचवा, विवाद का विषय। लिखित संविधान देश के राजनीतिक जीवन में सदा विवाद का विषय बना रहता है। कानूनवेत्ता इसकी धारणाओं की विभिन्न रूप से और विपरीतार्थक व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान को इसी आधार पर विधि विशारदों का स्वर्ग कहा गया और अमेरिकी संविधान के विषय में कहा जाता है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण की आलोचना। लिखित संविधान का वर्गीकरण बहुत से विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक माना जाता है। वस्तुतः संसार में कोई भी संविधान ऐसा नहीं जो पूर्णतः लिखित या अलिखित हो। सिर्फ इतना कहा जाता है कि अमुक संविधान मुख्यतः लिखित या अलिखित है, लेकिन उसमें भी मुख्यतः अलिखित अंश के अलावा लिखित अंश वर्तमान रहते हैं। लिखित संविधान में लिखित विषयों की अधिक मात्रा रहती है और परंपराओं पर आधारित विधियों की मात्रा कम। उसके विपरीत अलिखित संविधान में प्रथाओं एवं परंपराओं का अनुपात अधिक रहता है और लिखित कानून का कम। इस प्रकार लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। गवर्नर ब्राइस स्ट्रॉन्ग आदि विद्वानों ने इस वर्गीकरण का विरोध किया है। गवर्नर का कहना है कि लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। लॉर्ड ब्राइस का विचार है कि लिखित या अलिखित वर्गीकरण पूर्णतः संशोध या संतोषप्रद नहीं। उसका कहना है कि लिखित संविधान व्याख्याओं द्वारा विकसित होते हैं, न्यायिक निर्णयों द्वारा सुशोभित होते हैं और रीति रिवाजों द्वारा बढ़ते हैं, जिससे कुछ समय के बाद उनका मूल रूप अपने पूर्ण प्रभाव को प्रकट नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्ग ने भी इस वर्गीकरण का विरोध करते हुए कहा है कि यह मिथ्या भेद है, क्योंकि कोई संविधान ऐसा नहीं जो पूर्ण रूप से लिखित हो। लिखित संविधान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। संविधान में शासन के स्वरूप, संगठन, शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों आदि का उल्लेख एक प्रलेख में कर दिया गया है। फिर भी हम पाते हैं कि हम इसमें अलिखित प्रथाओं, संविधियों, कार्यपालिका के कार्यों और निर्णायक न्यायिक निश्चयों का विकास हो गया। उदाहरणतः राष्ट्रपति का निर्वाचन, राजनीतिक दल का विकास, मंत्रिमंडल का निर्माण आदि कुछ ऐसे विकास हैं जिन्होंने संविधान को काफ़ी हद तक बदल दिया। ब्रियड का कहना है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन तथा संशोधन अधिनियमों से नहीं अपितु रीति रिवाजों और प्रथाओं से हुए हैं, जिससे संविधान की आत्मा ही बदल गई। जबकि अमेरिकी संविधान एक लिखित संविधान का नमूना है, अलिखित होने के पश्चात भी ब्रिटिश संविधान में काफ़ी मात्रा में लिखित नियम पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप महान आज्ञा पत्र, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, अधिकारों का पत्र, संसदीय अधिनियम, क्राउन के मंत्रियों संबंधी अधिनियम 1907 आदि कतिपय मुख्य लिखित नियम हैं जो ब्रिटिश संविधान को बहुत हद तक लिखित संविधान का रूप देते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि ना तो अमेरिका और ना ब्रिटेन का ही संविधान पूर्ण लिखित या अलिखित है। यह ठीक है कि एक में से एक लिखित तत्वों का प्रधानता तो दूसरे में अलिखित तत्वों की प्रधानता रहती है। अतः दोनों में भेद केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। निष्कर्षतः यह वर्गीकरण गलत है। नमनीय और अनमनीय संविधान। प्रमुख संवैधानिक लॉर्ड ब्राइस ने संविधान के लिखित और अलिखित रूप को नहीं माना। उसने इसे गलत और असंवैधानिक बताया, इसलिए उसने संविधानों को सुपरिवर्तनशील और दुष्परिवर्तनशील संविधानों के नामों से संबोधित किया। इन्हें हम नमनीय और अनमनीय संविधान भी कहते हैं। नमनीय संविधान, नमनीय संविधान उस संविधान को कहते हैं जो धारा सभा द्वारा साधारण प्रक्रिया में बदला जा सकता है। साधारण प्रक्रिया का तात्पर्य है कि संसद या विधानसभा को संशोधित करने के सिलसिले में वही प्रक्रिया अपनाएं जो साधारण कानून के निर्माण में अपनाती है। अतः नमनीय संविधान का तात्पर्य उसकी संशोधन प्रणाली से है। जब संशोधन की प्रक्रिया ठीक साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है तो वह संविधान नमनीय कहलाती है। उदाहरणतः इंग्लैंड का संविधान नमनीय संविधान है क्योंकि संसद किसी भी समय साधारण प्रक्रिया से कानून में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के कुछ उपबंध साधारण प्रक्रिया द्वारा बदले जा सकते हैं, इसलिए इसे भी कुछ हद तक नमनीय संविधान कहा जा सकता है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व ऑस्ट्रिया, इटली एवं आयरिश फ्री स्टेट के संविधान भी मुख्यतः नमनीय संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते थे। नमनीय संविधान के गुण परिस्थितियों के अनुसार बदला जाना। नमनीय संविधान का सबसे बड़ा गुण यह है कि परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार उसे आसानी से बदला जा सकता है। इस तरह के संविधान में संकट का भय नहीं होता। फ्रांस की राज्य क्रांति का एक यह भी कारण था कि परिस्थितियों की मांग के अनुसार संविधान आसानी से बदला नहीं जा सकता। ब्रिटेन में कभी खूनी राज्य क्रांति नहीं हुई और ना उसका भय ही, क्योंकि इस तरह नमनीय संविधान अपने को परिवर्तनशील कर समाज की नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा, प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए हितकर। नमनीय संविधान का दूसरा गुण यह है कि प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए संविधान बहुत ही हितकर होता है। प्रगतिशील राष्ट्र जो संविधान का किसी खास समय में निर्माण करता है, जब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगता है तो समय के अनुसार आगे बढ़ते रहने के लिए उसे संविधान में हेर फेर करना पड़ता है। यदि वह इस प्रकार का हेर फेर नहीं करे तो उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए नमनीय संविधान प्रगतिशील राष्ट्रों के लिए लाभकारी होता है। तीसरा, नए नए विचारों एवं भावनाओं को आश्रय। नमनीय संविधान का तीसरा गुण यह है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नए नए विचारों और भावों को आश्रय दिया जाता है। स्पष्ट है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए समयानुकूल राष्ट्र के विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। यदि नए विचारों और भावनाओं को संविधान में प्रशय नहीं मिले तो संविधान मानव हित के लिए नहीं होगा। सुपरिवर्तनशील संविधान मानव की भांति गतिशील है, अतः नए विचारों और भावनाओं को ऐसे संविधान में आसानी से जगह दी जाती है। चौथा, राष्ट्रीय एकता। संविधान राष्ट्रीय एकता लाता है। चूंकि आसानी से बदला जा सकता है, अतः नागरिकों के किसी भी समुदाय की मांग को यह अपने समविष्ट कर सकता है। तात्पर्य यह है कि नागरिकों की विभिन्न और विपरीत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता यह रखता है। इसलिए देश में कलह या विदेश का डर नहीं रह जाता। दोस्त, पहला, शासन को निरंकुश होने का भय। नमनीय संविधान में शासन के निरंकुश होने का भय रहता है। उसकी शक्तियां अलिखित होने के कारण किसी भी हद तक बढ़ाई जा सकती हैं। शक्तियों की अनिश्चितता और असीमितता से शासन अधिकारियों को अनियंत्रित शक्ति मिल जाती है, फलतः उनका व्यवहार निरंकुश हो जाता है। दूसरा, अस्थाई। नमनीय संविधान अस्थाई होता है। इसमें किसी भी समय अधिक आवेश के फलस्वरूप परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा, स्वार्थ और दलीय भावना का शिकार। नमनीय संविधान में पवित्रता का वह पुट नहीं रहता जो अनमनीय संविधान में पाया जाता है, क्योंकि वह स्वार्थ और दलीय भावना का शिकार बनता रहता है। चौथा शासन व्यवस्था का ढीला होना। शासन व्यवस्था नवनीय संविधान के अंतर्गत ढीली रहती है, बहुत सी बातें अनिश्चित रहती हैं। पांचवा सार्वजनिक हित की हानि। शासन तथा राजनीतिक दल अपने स्वार्थानुकूल इसमें खींचतान करते हैं, अतः इसमें सार्वजनिक हित की हानि होती है। पांचवा छवा संघात्मक राज्यों के लिए अनुपयुक्त। नवनीय संविधान संघात्मक राज्यों के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि संघात्मक राज्य में शासन की इकाइयों के पास स्पष्ट स्थानीय शक्ति होनी चाहिए, जो एक लिखित संविधान में ही संभव है। अनमनीय या दुष्परिवर्तनशील संविधान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, संविधान के नमनीय वर्गीकरण का आधार संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया है। नमनीय संविधान में साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं रहता। इसके विपरीत अनमनीय संविधान में संवैधानिक कानून के निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया में भिन्नता रहती है। चूंकि संविधान को राज्य की सर्वोत्तम विधि समझा जाता है, इसलिए संशोधन लाने के लिए विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया संविधान निर्माती सभा द्वारा निश्चित की जाती है। अनमनीय संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसमें संशोधन कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा या 2/3 राज्यों के विधानमंडलों की मांग पर आयोजित विशेष सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तदुपरांत अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए 3/4 राज्यों के विधानमंडलों अथवा 3/4 राज्यों के विशेष सम्मेलनों की स्वीकृति आवश्यक है। संशोधन की यह प्रक्रिया राज्यों के व्यवहारतः बहुत जटिल है, इसलिए 1987 ईस्वी के पश्चात अभी तक सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान को भी बहुत अंश तक अनमनीय संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि कतिपय धाराओं में संशोधन लाने की प्रक्रिया की आवश्यकता है। गुण स्पष्ट तथा सुनिश्चित। अनमनीय संविधान स्पष्ट तथा सुनिश्चित होता है। कारण यह है कि इसे पर्याप्त वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद निर्मित किया जाता है। संदेशात्मक धाराओं को स्पष्ट बनाने की चेष्टा की जाती है। दूसरा पवित्रता तथा आदर का पात्र। अनमनीय संविधान पवित्रता तथा आदर का पात्र होता है। इसके लिए प्रावधानों का उल्लंघन करना असंवैधानिक समझा जाता है। न्यायालय इसकी रक्षा हेतु प्रहरी का काम करते हैं। राज्य की सर्वोच्च विधि होने के कारण सभी लोग संविधान का आदर करते हैं। तीसरा स्थायित्व। अनमनीय संविधान स्थायी होता है। क्षणिक आवेशों में आकर इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। परिवर्तन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए बहुसंख्यक जनता का समर्थन आवश्यक है। चौथा नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक। अनमनीय संविधान नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। इसमें नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख रहता है। उनके उपयोग और रक्षा के लिए विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख कर दिया जाता है। न्यायालय के ऊपर रक्षा का भार सौंप दिया जाता है। पांचवा संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। अनमनीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि उसमें राज्य की इकाइयों और शासन के अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। दोष राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा। कहा जाता है कि नमनीय संविधान राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक होता है। कारण यह है कि संविधान की जटिल प्रक्रिया के कारण वह समयानुकूल विचारों और परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरा क्रांति की संभावना। नमनीय संविधान कभी कभी क्रांति के कारण बन जाते हैं। ऐसे संविधान को बनाते समय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, और यदि रखा जाता है तो भविष्य को मापना आसान नहीं। अतः संविधान द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांतियां हो जाती हैं। मैकाले के शब्दों में क्रांतियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जहां राष्ट्र अग्रामी होते हैं वहां संविधान अटल होते हैं। तीसरा, परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्षमता नहीं। अनमनीय संविधान संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है। कारण यह है कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलने की क्षमता नहीं रहती। चौथा, जटिल और पेचीदा। अनमनीय संविधान जटिल और पेचीदा होता है, जिसके फलस्वरूप कभी कभी जनता शासन व्यवस्था उसके मूल्यों एवं स्वरूप तथा अपने अधिकारों को नहीं समझ पाती। पांचवा, वकीलों का स्वर्ग। अनमनीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी व्याख्या न्यायालयों द्वारा होती है, अतः वकील तथा न्यायाधीश मनमाने ढंग से इसका अर्थ लगाते हैं। कभी कभी न्यायाधीशों द्वारा दी गई व्याख्याएं राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में बाधक हो सकती हैं। छठवां, संविधान का उद्देश्य नष्ट। उत्तम संविधान वह है जो जनता की मांग के अनुसार अपने से आसानी से और उपयुक्त समय के अंदर परिवर्तन ला सके, लेकिन जटिल संविधान में संशोधन कभी कभी बहुत देर से संभव होता है। फलतः संशोधन होते होते संशोधन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अमेरिका संविधान में एक संशोधन में वर्षों लग गए हैं। नमनीय और अनमनीय संविधान में अंतर। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नमनीय और अनमनीय संविधान में भिन्नता है, लेकिन किसी भी संविधान को ना तो पूर्णतः नमनीय कहा जा सकता है और न ही पूर्णतः अनमनीय ही। उदाहरण स्वरूप, अमेरिकी संविधान अनमनीय होते हुए भी एक स्ट्रेट जैकेट की तरह जड़ नहीं है। उसमें संविधान की प्रक्रिया, परंपराओं, न्यायाधीशों की व्याख्याओं आदि के माध्यम से काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। इसके विपरीत ब्रिटेन जैसे नमनीय संविधान में कभी कभी संसद का बहुमत प्राप्त कोशिशों के बावजूद परिवर्तन नहीं ला सकता। मजदूर दल सत्तारूढ़ दल होने पर भी लॉर्ड सभा में कोई खास परिवर्तन ना ला सका। सच पूछा जाए तो नमनीय और अनमनीय संविधानों में सिर्फ एक वास्तविक अंतर है, वह यह है कि स्टोरी के शब्दों में संवैधानिक कानून या साधारण कानून की निर्माण प्रक्रिया में कोई अंतर है या नहीं। स्टेट के अनुसार नमनीय संविधान संवैधानिक कानून और साधारण कानून को एक स्तर पर रखता है, अर्थात दोनों एक ही तरह से विशिष्ट और ऊंचा स्थान रखता है और उसको संशोधित करने में कठिनाई होती है। डाइसी के शब्दों में नमनीय संविधान वह है जिसमें हर प्रकार के परिवर्तन लाया जा सकता है, और नमनीय संविधान वह है जिसमें संवैधानिक कानूनों में साधारण की तरह परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उत्तम संविधान की विशेषताएं। प्रोफेसर गेटल के अनुसार उत्तम संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, स्पष्टता। संविधान को राज्य के संगठन, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों की शक्तियों और नागरिकों अधिकारों के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इसमें वाद विवाद का अवसर कम आता है, क्योंकि इसमें अधिकांश बातें स्पष्ट और असंदिग्ध होती हैं। दूसरा, निश्चयता। संविधान में संभवतः हर विषय का निश्चित विवरण रहना चाहिए। इससे कानूनों को समझने में आसानी होती है तथा उसकी विवेचना संभव होती है। तीसरा, व्यापकता। गर्टल के शब्दों में संविधान को व्यापक होना चाहिए, जिससे संपूर्ण सरकारी क्षेत्र में इसके अंदर आ जाए। सामान्य रूप से कम इसे सभी राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग और प्रबंध तथा राज्य के मूलभूत संगठन का खाका तैयार कर लेना चाहिए। चौथा, सूक्ष्मता। संविधान को अधिक विस्तृत तथा विवरणात्मक नहीं होना चाहिए। विवरणात्मक संविधान शीघ्र ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। संविधान परिस्थितियों के कारण उसके कुछ उपबंध अस्थिर एवं प्रतिष्ठाहीन हो जाते हैं, इसलिए संविधान को संभवतः सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल इसमें बदलने की क्षमता भी होनी चाहिए। पांचवा, सुपरिवर्तनशीलता। उत्तम संविधान वह है जो समय की मांग को परिलक्षित कर ले। परिस्थितियों तथा आवश्यकताएं समय के अनुसार पैदा होती हैं। अतः संविधान को भी नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि उसके अंदर यह क्षमता हो, लेकिन साथ साथ यह भी आवश्यक है कि संविधान को मुख्य स्थायी होना चाहिए। स्थायी संविधान शासन को संकीर्ण बना देता है, यह जनहित के अनुकूल नहीं रह पाता तथा इसमें क्रांति का भय बना रहता है। अतः उत्तम संविधान में स्थायित्व एवं परिवर्तनशीलता का सम्मिश्रण होना चाहिए। 6. मौलिक अधिकारों की घोषणा। संविधान का अंतिम उद्देश्य नागरिकों का हित है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक संविधान को ही उत्तम संविधान कहा जा सकता है। इसके लिए हर संविधान में नागरिकों के अधिकारों की घोषणा करनी चाहिए तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी। 7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका संविधान का अभिभावक तथा नागरिक अधिकार का संरक्षक है, अतः संविधान से उसकी स्वतंत्रता की गारंटी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। 5. संविधान के निर्माण और विकास के साधन। संविधान के निर्माण के निम्नलिखित 4 प्रमुख साधन हैं। 1. स्वीकृति द्वारा। अनेक आधुनिक संविधान मध्यकाल के निरंकुश शासकों द्वारा घोषित प्रलेखों के प्रतिफल हैं, जैसे जापान का संविधान। 2. निश्चित निर्माण द्वारा। कतिपय आधुनिक संविधान निर्माती सभाओं या शासकों द्वारा विचार विमर्श और विवेक के बाद बनाए गए हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा आदि के संविधान। 3. क्रांति के द्वारा। कभी कभी जनता या सेना दमनकारी शासन से उबकर आंतरिक क्रांति पर बैठती है और नए संविधान को जन्म देती है, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद निर्मित संविधान, सोवियत रूस का 1917 का संविधान, मिस्र का संविधान आदि। 4. क्रमिक विकास द्वारा। समय समय के साथ संविधान में भी परिवर्तन आता रहता है, अतः उसकी स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन की निरंकुश राजतंत्र ने प्रजातंत्र का रूप ले लिया है। संविधान के विकास के साधन। संविधान एक वृक्ष की नाई होती है जो समय के अनुसार बढ़ता रहता है। इसकी जड़ें मजबूत होती हैं, अनेक शाखाएं निकल आती हैं तथा अनेक जड़ें और शाखाएं नष्ट भी हो जाती हैं। संविधान रूपी वृक्ष के विकास के निम्नलिखित साधन हैं। 1. संशोधन द्वारा। प्राय लिखित संविधान में संशोधन लाने की प्रक्रिया का उल्लेख कर दिया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। उस संविधानों में साधारण कानून की प्रक्रिया से ही परिवर्तन लाया जा सकता है। 2. न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा। न्यायिक संविधान के उपबंधों की व्याख्या करते हैं और उसे स्पष्ट रूप देते हैं। ऐसा करते हुए वे संविधान को नया रूप प्रदान करते हैं। इसलिए अमेरिकी संविधान को न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान कहा जाता है। 3. रीति रिवाजों द्वारा। संविधान प्रयोग में आता है तो उसे सुगम रूप में चलाने के लिए कतिपय प्रथाएं चल पड़ती हैं। वे प्रथाएं चिरकाल तक प्रयोग में लाने के बाद लिखित कानूनों के समान महत्वपूर्ण हो जाती हैं और संविधान में निश्चित परिवर्तन लाती हैं।